नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, वणक्कम, सुस्वागतम एंड पधारो इन योर फेवरेट शो समाधान। मित्रों, शिक्षक महोदय क्लास में पढ़ा रहे थे। उसी क्लास में दो बच्चे राम और रहीम बहुत अच्छे दोस्त थे। इन पढ़ते पढ़ते उनके बीच में लड़ाई हो गई। टीचर महोदय ने पूछा, क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? तो राम ने कहा कि सर, बात ऐसी है, लेकिन ये रहीम इस बात को समझ नहीं रहा है। रहीम ने कहा, नहीं सर, बात ऐसी है, लेकिन ये राम इस बात को नहीं समझ रहा है। टीचर ने उन दोनों की बात को समझा और उन्हें कहा कि चलो तुम मेरे पास आ जाओ। उन्होंने राम को एक तरफ खड़ा किया, रहीम को दूसरी तरफ खड़ा किया और अपने दराज से एक बड़ा सा बॉल निकाल के रख दिया टेबल पे। राम को कहा, देखो ये तुम्हें किस कलर का दिखाई दे रहा है ये बॉल? राम ने कहा कि ये सफेद कलर का दिखाई दे रहा है सर। रहीम को कहा कि ये किस कलर का दिखाई दे रहा है? रहीम ने कहा, सर ये बॉल तो काले कलर का है। अब वहां भी दोनों भिड़ गए कि नहीं नहीं ये सफेद कलर का है। उसने कहा, नहीं ये काले कलर का है। अब सर ने कहा कि तुम दोनों अपना अपना स्थान ना चेंज कर लो। रहीम को कहा तुम इस साइड आ जाओ, राम को कहा तुम इस साइड आ जाओ। अब दोनों का स्थान चेंज करने के बाद फिर जब उनसे पूछा कि अब बताओ बॉल का कलर कैसा है, तो दोनों के उत्तर परिवर्तित हो गए थे। सर ने बहुत प्यार से उन्हें समझाया कि देखो, जब कभी कोई बात होती है, उस बात को अलग अलग नजरिए से देखने और समझने की आवश्यकता होती है। राम अपनी जगह पे ठीक है, रहीम अपनी जगह पे ठीक है। यदि दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, एक दूसरे के नजरिए को समझने की कोशिश करें, तो आपस का प्रेम बना रहेगा। क्योंकि जिस स्थान पे खड़े होकर के तुम दोनों एक चीज को देख रहे हो, अपनी अपनी जगह पे दोनों ही ठीक है। इसीलिए बहुत ही सुंदर प्रेरक बात सर जी ने कही, एक तो दूसरे के नजरिए को समझने की कोशिश करनी चाहिए व्यक्ति को, और दूसरा बहुत प्रेम से अपने नजरिए को दूसरों को समझाने की कोशिश करनी चाहिए। तभी एक अर्थपूर्ण संवाद होता है, अन्यथा बात लड़ाई झगड़े में बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। एक सुंदर और प्रेरक बात है मित्रों, जिसे जीवन में हर क्षेत्र में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने नजरिए को सही ढंग से रखें और साथ ही दूसरे के नजरिए को भी समझने की कोशिश करें। ऐसी सुंदर बात के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं, अभिनंदन करते हैं भ्राता जी का। भ्राता जी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। थैंक्स। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है भ्राता जी, नजरिए की, कि हर एक अपनी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन शायद हम या तो समझ नहीं पा रहे हैं या समझा नहीं पा रहे हैं।
परिवारों में पहले इसकी बहुत जरूरत है
जी।
अपनी बात भी बहुत अच्छे ढंग से रखें और दूसरे की बात भी जरा ध्यान से सुन लें, तो आधी चीज तो यहीं समाप्त हो जाएगी
जी, जी।
एक व्यक्ति बहुत गर्म हो और आप उसकी बात बिल्कुल न सुन रहे हो तो वो और गर्म होता है। लेकिन आपने उसकी बात सुन ली ना ध्यान से, तो उसका क्रोध आधा ठंडा हो जाएगा। इसलिए परिवारों में माँ अपने बच्चों की सुने, बच्चे माँ बाप की सुने, और जब अपनी बात कहने की का समय है तो बहुत सॉफ्टली, जैसे शिवबाबा ने हमें समझाया, सत्यता को सभ्यता पूर्वक बोलो। सत्य तो अवश्य बोलो, लेकिन सत्य कड़वाई थोड़ा ही होता है, सत्य तो मीठा भी हो सकता है। तुम उसमें अपनी सभ्यता को न छोड़ो। कई लोग, मैं तो सत्य हो ना जो कहता हूँ, और गर्मा गर्मी हो जाती है, तुम झूठे हो और तुम ऐसे ही हो, तो वो जो सत्य बात है उसके साथ सभ्यता न रहने से सत्य की रॉयल्टी, सत्य की डिविनिटी समाप्त हो जाती है। तो परिवारों में भी ये होता, हर व्यक्ति सोचता है मैं तो सत्य हूँ, दूसरा गलत है, वो भी उसे सोच रहा है मैं सत्य हूँ, ये गलत है। तो जैसे बोल की बात थी, पहले दोनों एक दूसरे को गलत ढंग से देख रहे थे, बोल को हो सकता है उसने कुछ ऐसे एंगल पे रखा हो कि उधर से वो काली दिखती हो, दूसरी तरफ से वो सफेद दिखती हो। तो ऐसे ही बस इतनी समझदारी अगर संबंधों में आ जाए, मैं इसको रिलेशनशिप से जोड़ना चाहता हूँ, तो संबंधों में प्यार, अपनापन, सौहार्द, इसकी बहुत आवश्यकता है ना आजकल। आजकल इसी की कमी के कारण लोग सुख नहीं पा रहे हैं, तो अगर ये दोनों बातें ठीक कर ली जाए तो सचमुच संबंधों में बहुत
मधुरता आ जाएगी। भ्राता जी वही बात आ जाती है कि हम थोपने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो चीज मुझे राइट लग रही है मैं थोपना चाहता हूँ दूसरे के ऊपर, दूसरे को समझूं या उसकी बात सुनूं, ये बात बहुत ही कम हो गई है। और एक बात शायद हमारी चर्चा हुई थी भ्राता जी कम्युनिकेशन के बारे में, कि भगवान ने हमें दो कान दिए हैं और एक मुंह दिया है ताकि हम ज्यादा सुने और कम बोलें, लेकिन ये उल्टा हो गया है आजकल कि हम बहुत बोलते हैं सुनते बहुत कम।
हाँ बिल्कुल ऐसा ही हो गया है। तो यहाँ इस चीज को पुनः अपने जीवन में, अपने संबंधों में लाने की बहुत जरूरत है। कभी कभी ऐसा होता है, मान लो हम बिल्कुल सत्य हैं और हमें दिख रहा है दूसरा व्यक्ति गलत है, वो अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर रहा, हमारी सत्य को भी स्वीकार नहीं कर रहा, तो हम ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। तुम क्या समझते हो, बिल्कुल हम सत्य हैं, हम इसे सिद्ध करके दिखाएंगे, तुम झूठे हो। तो यहाँ बहुत अच्छी मानसिक स्थिति कायम रखने की जरूरत होती है। इसलिए इन सब बातों में अगर हमारी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी होगी तो सब कुछ ठीक होगा। देखिए एटीट्यूड्स, ठीक एटीट्यूड्स रखने के लिए स्पिरिचुअल पावर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो सीधी सी बात, हमें तो बाबा कहते हैं तुमने हरा चश्मा पहन लिया तो सब हरे ही हरे दिखाई देंगे, लाल पहन लिया तो सब लाल लाल ही दिखाई देंगे। इसलिए अपने चश्मे को ठीक करो, यानी अपने एटीट्यूड्स को ठीक करो, और ये स्पिरिचुअलिटी से बहुत अच्छी तरह आ जाता है। जब बाबा ने हमें, देखिए मैं अपने व्यक्तिगत जीवन की बात बताऊं, जब मुझे ये महावाक्य सुनने को मिले कि तुम तो महान हो ही, लेकिन जिनके साथ तुम रहते हो वो भगवान के बच्चे हैं, देयरफॉर दे आर आल्सो ग्रेट, इस एटीट्यूड से उन्हें देखो, और ये एक बहुत सुंदर बात जीवन के लिए रही। खराब से खराब व्यक्ति को भी, जो बाहरी रूप से खराब दिखता है, जब हम इस नजर से देखने लगे इज ए ग्रेट पर्सन, भगवान का बच्चा तो है ना, उसमें क्वालिटीज तो बहुत है ना, उसने प्योरिटी का पथ तो अपना लिया है ना, कितनी बड़ी महानता है, तो सचमुच संबंध बदल गए।
जी जी जी, मतलब एक स्पिरिचुअल पावर की हमेशा आवश्यकता होती है। और एक बात तो मुझे बैठे जी और याद आ रही थी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब एक बार एक शब्द यूज कर रहे थे, बड़ा अच्छा लगा, कि मतभेद तो होंगे ही लेकिन मन भेद ना हो। ये बड़ा ही अच्छा लगा मुझे ये वाक्य, चाहे ये धर्मों की भी बात है बेटा जी, मतभेद अर्थात बहुत सारे विचार हो सकते हैं चाहे धर्मों के बीच हो, लेकिन मन में भेद ना हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट।
बिल्कुल, मोदी जी भी सचमुच सधे हुए बुद्धिमान व्यक्ति है, यदि उनको एक अच्छा विद्वान कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये ठीक बात है कि डिफरेंट फिलोसफीज तो हैं, अगर भिन्नता ना हो, एक ही जैसे गेंदे के फूल खिल रहे हो पीले पीले, गुलाब के सफेद, लाल और नीले और हरे, ये ना हो तो मजा नहीं आएगा ना देखने में। तो सचमुच हरेक के धर्म ग्रंथों में कुछ बातें सत्य लिखी हुई हैं, चलो कुछ में मिलावट हो गई हो वो अलग बात है, या कुछ ने, कुछ चीजें उनके प्रोफेट्स ने उस समय के अनुसार लिख दी हो जो आज के समय पर उतनी लागू न हो रही हो, ये भी बात हो सकती है। लेकिन मन भेद, यानी मन में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, ग्लानी की भावना, ये खराब है, हम अच्छे हैं, ये न होना चाहिए। तो इस बात को यदि सारा संसार अपना ले तो सचमुच ये जो सब झगड़े हैं ना, चुप की बजाते समाप्त हो जाएंगे।
बिल्कुल, और इसी की कामना हम करते हैं बेटा जी, समाधान मंच ही उसी के लिए है कि कोई समस्या ना रहे, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, पारिवारिक क्षेत्र हो, हर जगह समाधान की स्थिति बनी रहे। बेटा जी, सुंदर बात के साथ मैं आपको लिए चलता हूँ मेल की ओर। ये बरखा जी ने हमें पहला मेल भेजा है और ये कहती है, नमस्कार सर, ओम शांति, मैं पीस ऑफ माइंड टीवी के माध्यम से आपसे जुड़ी हुई हूँ। मैं बैंक में ऑफिसर हूं और मेरे हस्बैंड एक्साइज इंस्पेक्टर हैं। मेरे हस्बैंड एक्साइज में हैं जो लीकर से रिलेटेड जॉब है। बता जी, ये बहुत ही तेज शराब होते हैं, उससे जुड़े हुए डिपार्टमेंट से ये हैं। वो खुद ड्रिंक नहीं करते हैं और कोई बुरी आदत नहीं है, पर क्या ये जॉब करने में मेरे हस्बैंड के भी बुरे कर्मों का खाता बनता है? ये इनका पहला प्रश्न।
नहीं, ये तो उनकी जॉब है ना, ये उनका कर्तव्य है, और उस फील्ड में यदि कोई गलत कार्य हो रहा है, कोई अनियमितता बरती जा रही है, तो उनका काम है उसकी रिपोर्ट करना, उसको ठीक कराना। तो इन कार्यों को गलत बिल्कुल नहीं कहा जाएगा, क्योंकि कुछ लोग तो इस कार्य में लगेंगे ही ना।
जी जी,
और इनका कार्य तो इम्प्रूवमेंट का है, एक रिपोर्ट देने का है, इनका अपना इन्वॉल्वमेंट तो उसमें है ही नहीं। अगर वो खुद भी पीते तो वो गलत,
और ये अच्छी बात है कि ये खुद किसी भी, मतलब पीते नहीं या बुरी आदतों से मुक्त,
उसमें कोई राजयोगी भी हो सकता है, बहुत अच्छा व्यक्ति भी संलग्न हो सकता है, इसको बुरा नहीं माना जाना चाहिए।
कई बार जो घर की महिलाएं हैं व्रत जी, ऐसे विभागों में जब पति होते हैं तो थोड़ा उनके अंदर डर रहता है, क्योंकि आजकल माफिया राज भी है और जो वो कुछ भी कर देते हैं, ऐसे में थोड़ा डर का भाव भी रहता है कि कहीं कुछ ऊपर नीचे ना हो, ऐसे में क्या कहें?
बिल्कुल, मैं तो इन्हें ये राय दूंगा कि थोड़ा अभ्यास करके राजयोग का, ये इस गुड फीलिंग में रहें, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ और स्वयं ऑलमाइटी सर्वशक्तिवान परमात्मा मेरे सिर पर छत्र छाया है, बस इस फीलिंग से ही विल रिमेन सेफ फॉर एवर। उनको स्वयं सर्वशक्तिवान प्रोटेक्ट करेंगे। और बात यह है कि जहाँ ऐसा फील्ड हो वहाँ मनुष्य को एक समझदारी अवश्य बरतनी चाहिए कि उन लोगों से अपने संबंध न बिगाड़े। अपना कार्य ठीक से करना वो अलग चीज है, लेकिन उन लोगों में खुद इन्वॉल्व न हो जाएं, पर इसका ध्यान रखेंगे, संबंध नहीं बिगाड़ेंगे तो वो इनको नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचाएंगे।
लेकिन ये कैसे संभव है? मेरा काम ही ये है कि वो गलत कर रहे हैं तो उन्हें रोकना या उनकी रिपोर्ट करना या उन्हें पकड़ना, ये मेरा काम ही है। अब यदि मैं वो करता हूं तो संबंध तो बिगड़ेंगे, नहीं करता हूं तो मैं अपनी जॉब
नहीं। देखिए, मनुष्य दो चीजें हैं, एक उनको अपना कर्तव्य पूर्ण करना है, दूसरा इनके मन में उन व्यक्तियों के लिए एक बहुत प्योर फीलिंग है कि भाई ये भगवान के बच्चे हैं, ये बहुत अच्छी आत्माएं हैं, इन्हें ये काम नहीं करना चाहिए। तो जहाँ वाइब्रेशंस हमारे बहुत अच्छे होते हैं, जहाँ हमारे अंदर कोई स्वार्थ भावना नहीं होती, जहाँ हमारे मन में किसी को कष्ट देने की कोई इच्छा नहीं होती, वहाँ नाते नहीं बिगड़ते।
बिल्कुल, मतलब इनकी ड्यूटी भी होती रहेगी और ये सुरक्षित भी रहेंगे। एक बार जैसे भरत जी आपने कही कि योग का अभ्यास करें, तो मान लीजिए ये यदि विद्यालय से नहीं जुड़े हैं, वैसे तो बरखा जी भी नहीं जुड़ी हैं, केवल पीस ऑफ माइंड चैनल ही देखती हैं, तो क्या बरखा जी ये अभ्यास करें तो पति सुरक्षित हैं और किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं?
ये भी सत्य है कि अगर ये बहुत अच्छा योग अभ्यास घर में रह के करेंगे तो इनके वाइब्रेशन इनके पति देव को भी सुरक्षित रखेंगे।
बिल्कुल। आगे ये कहती हैं भरत जी कि उनका ये विचार है, वो कहते हैं इनके पति देव जो इंस्पेक्टर हैं, कि वो कहते हैं कि इस जमाने में ईमानदारी से कोई भी काम नहीं किया जा सकता, बेईमानी तो करनी ही पड़ती है और ये हमारे सिस्टम में घुस गया है, ये बात वो कहते हैं। तो उन्हें क्या समझाया जाए, क्या बताया जाए, क्या इस चीज को ठीक किया जा सकता है?
नहीं, देखिए कलयुग में वो तो ठीक ही कह रहे हैं, अभी एंड ऑफ कलयुगा है और यहाँ परफेक्टली कोई ऑनेस्ट हो ये उनको चारों ओर दिखाई नहीं देता ना। सब लोग जानते हैं कि ये सब बुराइयां, करप्शन और ये लेन देन कैसे उसका एक रूटीन वर्क बन गया, इसको लोग बुरा भी नहीं समझते। कहीं से किसी को लेना तो कहीं से किसी को देना है, ये सब चलता रहता है। लेकिन फिर भी मनुष्य ध्यान रखे कि हमें इसमें पति नहीं करनी चाहिए। कई बार मनुष्य ऐसा लोभी हो जाता है कि बिना लिए वो किसी का काम करता ही नहीं, ये गलत काम है, ये बिल्कुल गलत इंटेंशन है। लेकिन कहीं आपको सहज ही कुछ मिल रहा है उसमें ठीक है, कोई हर्जा नहीं, क्योंकि संसार ही ऐसा है।
बिल्कुल, मतलब थोड़ा सा इसमें हल्के होने की आवश्यकता है। तो जो एक बात हम लगातार करते आए हैं भ्राता जी, कई आंदोलन चलते रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार को जड़मूल से उखाड़ फेंकेंगे, बड़ा ही एक उग्र सा आंदोलन, उग्र क्या, शीतल सा आंदोलन था लेकिन उग्र हो गया था। तो क्या ये एक कामना नहीं रखनी चाहिए कि ये जो भ्रष्टाचार है, गंदगी है, जड़ मूल से खत्म हो जाए?
नहीं, बिल्कुल ये खत्म होगी ही, ये कामना ही सबको रखनी चाहिए। लेकिन ये तभी संभव होगा जब मनुष्य श्रेष्ठाचारी बन जाए। एक एक को समझाया नहीं जा सकता, कानून बन गए, लोकपाल नियुक्त हो गए, लोग जेलों में डाल दिए गए, बदनामी हो गई, कोले ने तो कितनों को काला कर दिया, लेकिन वो चीज रुकने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि ये समय का भी प्रभाव है। इसलिए शिव बाबा क्या कर रहे हैं, हरेक मनुष्य को श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए ज्ञान दे रहे हैं। तो जब मनुष्य श्रेष्ठाचारी बनते जाएंगे, आज 10 हैं, कल 20 होंगे, फिर 100 होंगे, फिर 1000 होंगे, फिर लाख, करोड़, और इस तरह चारों ओर ये क्रांति सी फैल जाएगी। तो ये जो स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन है हर मनुष्य को श्रेष्ठाचारी बनाने का, यही इस भ्रष्टाचार को और पाप को समाप्त करने की विधि है।
बिल्कुल, मतलब शुरुआत हमें अध्यात्म से ही करना होगा कि अंदर से व्यक्ति परिवर्तित हो तभी ये बाहर सिस्टम में परिवर्तन आएगा। क्योंकि लगता है जी सीधे सीधे तौर पे ये लोभ ही है ना,
लोभ है। हम तो उसको ये भी है, सभी कर रहे हैं, तुम पीछे क्यों रह रहे हो? और जब उसको लगता है यार 5 लाख मिल रहे हैं तो सोचता है
और सहज मिल रहे हैं
बच्ची की शादी करनी, तो ये सब लोभ, दिखावा, इस सब ने इसको जन्म दे दिया है। अगर हम मनुष्य की मेंटेलिटी को बदले और उसे कुछ मॉरल एजुकेशन दी जाने लगे, स्कूल टाइम से ही, पहली क्लास से ही दी जाने लगे, तो बहुत अच्छा हो जाए, तो मनुष्य इससे मुक्त हो सके।
बिल्कुल, क्योंकि बच्चों को भ्राता जी कई बार जब हम लोग छोटे थे और ये कहा जाता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इतने जोर जोर से पढ़ते थे और अंदर ऐसे भर गया था, और जब थोड़े बड़े हुए समझ आए कि अरे ये सब चल रहा है, तो बड़ा दुख सा हुआ और लगा कि हम कैसे समाज में रहेंगे और कैसे इस चीज को मेंटेन करके रखेंगे, क्योंकि बचपन में भरी तो थी लेकिन सिस्टम ऐसा होता है तो व्यक्ति शायद इस पॉलिसी को छोड़ देता है और फिर शामिल हो जाता है। आगे रहते जी, इन्होंने अपनी तरफ से एक प्रश्न किया है कि सर एक सवाल और है कि मैं बैंक में जॉब करती हूँ और जैसा आपने बताया कि हर जॉब में कोई ना कोई स्ट्रगल होता ही है, मेरी जॉब में एज ए ऑफिसर मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। बैंक में मेरे सामने रोज सिचुएशंस आती हैं जिसमें मुझे डिसीजन लेना होता है, और जैसे कोई कस्टमर, इन्होंने एक सिचुएशन रखी, जैसे कोई कस्टमर आया, अब वो चाहता है कि 100 रुपए जो चार्ज उसके काटने हैं वो ना काटे जाएं, वो बार बार रिक्वेस्ट करता है कि ये मेरे 100 रुपए आप मत काटिए, और बैंक के लिए वो मुनाफे का काम है, वो मुझे काटना भी है, लेकिन सामने वाला रिक्वेस्ट कर रहा है कि नहीं आप मत काटिए, तो ऐसे में मैं उहापोह की स्थिति में फंस जाती हूँ कि मैं सामने वाले को तकलीफ दे रही हूँ और नहीं काटती हूँ तो बैंक का भी नुकसान होता है, तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए?
देखिए बिल्कुल ठीक बात है, अभी बैंक के जो अपने डिसिप्लिन हैं, जो नियम बने हुए हैं, उसको तो वो अधिकारी है, उस अनुसार ही काम करना होगा। रही बात उसकी कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे 100 रुपए न काटिए, अब उसको इनको कन्विंस करना आना चाहिए, और कन्विंस करने में इनकी अपनी जो इनर विजडम है वो बहुत अच्छा काम करेगी। और जो हम हमेशा एक चीज सिखाते हैं कि ऐसे लोगों को दो चीजों की बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति आत्मा है और मैं अपने को एक स्वमान में स्थित करें, स्वमान में स्थित करके आत्मिक दृष्टि से यदि उनको अपनी बात कहेंगे, कन्विंस करेंगे, तो व्यक्ति जल्दी कन्विंस हो जाएगा।
बिल्कुल, मतलब उनको कन्विंस किया जाए क्योंकि ये इनका जॉब है और ये कार्य इन्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो क्योंकि कई बार व्यक्ति सॉफ्ट हार्टेड होता है और जैसे इनकी बात से लगता है कि बहुत स्पिरिचुअल है, तो सामने वाला व्यक्ति बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है तो लगता होगा कि
देखिए इसमें बाबा ने जो हमें सिखाया लव एंड लॉ का बैलेंस
जी,
तो कानून तो ये कहता है कि भाई बैंक को प्रॉफिट देना चाहिए क्योंकि ये बैंक एम्प्लॉइज है, पहला कर्तव्य इन्हें उसके लिए करना है जिनसे इनको सब कुछ मिल रहा है। लेकिन किसी केस में मान लो एक व्यक्ति बहुत गरीब है और उसके पास 100 रुपए की काफी अच्छी वैल्यू है, वो कीमत है, तो ये देख लें कि कहां मुझे लॉ से हटकर एक लव फुलफिलिंग का उदाहरण प्रस्तुत करना है कि इस व्यक्ति को जैसे हम मदद कर रहे हैं अब 100 रुपए की, तो इसमें निर्णय लव एंड लॉ के बैलेंस को ध्यान में रखते हुए लेना चाहिए,
मतलब सिचुएशन देख लेना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, उस आधार पर ये निर्णय लें। पता जी एक और आगे की बात इन्होंने लिखी, क्योंकि ये अब चैनल देखती हैं तो कई प्रश्न उठते हैं, कहती हैं कि आपका प्रोग्राम देखती हूँ, अच्छा लगता है, लेकिन बहुत सारे प्रश्न भी मेरे मन में उठे हैं प्रोग्राम को देखते हुए। अभी रिसेंट एपिसोड्स में आपने बताया कि हर 5000 साल के बाद सब कुछ फिर से रिपीट होता है, मतलब यही सब कुछ फिर से, ये इनका प्रश्न है, क्या मेरे रिलेशनशिप्स भी नहीं मतलब ऐसे ही रहेंगे जैसे कि अभी हैं? वैसे जो भी अभी मेरे रिश्तेदार हैं सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन छोटी बड़ी गलतियां जीवन में होती हैं, मैं उन गलतियों को सुधारना चाहती हूं और अपने जो संबंध हैं नेक्स्ट बर्थ में उन्हें और खूबसूरत बनाना चाहती हूं। आज इस बर्थ में जो भी गलतियां मैंने कर ली हैं, अगर नेक्स्ट 5000 ईयर्स के बाद फिर से वो रिपीट होगा, मैं ये जानती हूँ, और उस समय जानते हुए भी मैं नहीं सुधार पाऊंगी, ये सुनकर थोड़ा सा मुझे ये निराशा का भाव पैदा होता है, तो कृपया इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें कि ये ऐसा क्यों है, यदि हम सुधरना चाहते हैं तो वो सुधरने की गुंजाइश इसमें क्यों नहीं होनी
चाहिए? सुधरने की गुंजाइश पूरी पूरी है, ये जो वर्ल्ड ड्रामा है इसकी सीक्रेसी जो इसके पीछे है उनको इन्हें जानना चाहिए, और जैसे जैसे मनुष्य की बुद्धि बहुत रिफाइन होती है तो वो इन सीक्रेट्स बातों को जान लेता है, समझ लेता है, नहीं तो बहुतों के ये क्वेश्चन रहते हैं और वो अटके रहते हैं कि जब सब कुछ वही होगा तो सुधरने की कोई मार्जिन नहीं, ये तो सब बेकार हो गया, हम तो बंधे हुए कार्य कर रहे हैं, ये भगवान ने क्या कर दिया। ऐसा नहीं, देखिए 5000 साल में ये खेल रिपीट होता है, इनके तो संबंध अब अच्छे हैं, मान लो किसी के संबंध अब खराब हैं, अब वो इनको बदलना चाहता है, तो वो ये नहीं कह सकता कि हम बदल नहीं सकते, क्योंकि जो फ्यूचर है मान लो टुमोरो, अब टुमोरो तो पता नहीं ना क्या है, फिक्स तो वो है, वही रिपीट होगा जो कल पहले हुआ था, लेकिन इनको तो पता नहीं ना कि वो क्या है, तो आज से ही ये अपने संबंधों को स्वीट बनाने का अभ्यास करें, और मान लो टुमोरो इनके संबंध बहुत स्वीट हो जाएं, तो कल पहले भी हुए थे और अगले कल्प में भी वैसे ही होंगे, इन्हें इस तरह सोचना चाहिए। तो ड्रामा के ज्ञान को परफेक्टली और एक्यूरेटली समझना है तो इसको हम बहुत एंजॉय करेंगे, हम अपने मन को प्रसन्न रख सकेंगे, निश्चिंत रह सकेंगे, और इससे हमारा भविष्य को सुधारने का पुरुषार्थ और तेज हो जाएगा। ये प्रश्न ही नहीं है कि क्या हम भविष्य को नहीं सुधार सकते, भविष्य तो अभी अंधकार में है ना, हम उसको संपूर्ण रूप से सुधार सकते हैं।
बात तो भविष्य की ठीक है प्रचार जी, वर्तमान अब ज्ञान मेरी समझ में आ गया, अब मैं अच्छा कर्म करने लगा तो निश्चित रूप से मेरा भविष्य ठीक होगा, अब ये तो ठीक कर लिया मैंने। लेकिन बात जहां आती है, जहां तक मैंने देखा है लोगों के ईमेल्स के द्वारा जो आती है, जिससे लोग परेशान होते हैं कि पहले अभी दो दिन पहले या एक साल पहले या दस साल पहले कहीं इतना गड़बड़ हो गया, जैसे इन्होंने भी कहा कि छोटी मोटी गलतियां तो होती हैं और हम नहीं चाहते कि अब वो हो, तो क्या ऐसा प्रावधान नहीं होना चाहिए कि अगले कल्प में ये ना हो?
अब इसका प्रावधान इस तरह हो सकता है, क्योंकि वो चीज हो गई, मान लो दस साल पहले हो गई, पास्ट इज पास्ट करके ये उस चीज को फॉरगेट करें और अपने को भी क्षमा कर दे। मान लो हमने ही कोई गलती कर दी, अपने को क्षमा कर दे, उसका इफेक्ट ये वर्तमान पे ना आने दे, क्योंकि उसको रिपीट होने में पुनः 5,000 साल ही लगेंगे, तब से अब ये 10 साल कम हो जाएंगे तो वो तो रिपीट होगा ही, क्योंकि उसके पहले जो कर्मों की चेन है एक वो किसी कारण से हुआ ना। मान लो एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ
जी,
युवक का, अभी वो माँ चाहती है कि अगली बार उसका एक्सीडेंट ना हो, ऐसा कुछ उपाय किया जाए। अभी एक्सीडेंट क्यों हुआ था? क्योंकि वो बहुत तेज बाइक चला रहा था। एक्सीडेंट इसलिए हुआ था कि उसने थोड़ी ड्रिंक भी कर ली थी। एक्सीडेंट इसलिए हुआ था कि तीन दो साथी और बैठे थे और वो खूब हंसी मजाक करते हुए आ रहे थे। अब इन तीनों चीजों को यदि बदल दिया जाए, जो 10 साल पहले हुआ था, वो ड्रिंक भी ना करे, वो फास्ट भी ना चलाए और साथियों से गपशप करके जो ध्यान उसका नहीं था बाइक चलाने में वो भी ठीक कर लिया जाए, तो अगले कल्प में ये एक्सीडेंट नहीं होगा। परंतु उसको कौन ठीक करे? ऐसे हर कर्म के पीछे एक चेन होती है कर्मों की, अगर उसको ठीक किया जाए तो वो कर्म नहीं होगा। तो उसको कौन ठीक करे? वो तो पास्ट हो गया ना, वो तो 10 साल हो गए, अब उसको कैसे ठीक करे? इसलिए एक बुद्धिमान मनुष्य को हमेशा भविष्य की ओर देखना चाहिए कि भविष्य में ये चीजें ना हो, और जो पास्ट हो गया पास्ट हुआ उसको भूलना है और आगे की और वर्तमान की स्थितियों को संभालना है, तो ये ड्रामा का ज्ञान बहुत सुखदायी और कल्याणकारी हो जाएगा।
बिल्कुल, क्या ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए व्रता जी कि जो ये हूबहू वाली बात है ना, वो लोगों को इसीलिए शायद परेशान करती है कि ये जो बहुत बुरी घटनाएं हुई, ठीक है अब ज्ञान के आधार पे हम समझ सकते हैं कि उसका एक रीजन था, जैसे आपने एक उदाहरण दिया कि भाई वो चीजें अब बातचीत कर रहे थे या कुछ भी, अगली कल्प में कुछ सुधार की गुंजाइश रहती है कि हाँ भाई तुम देखो ये गलती तुमने कर ली थी, अब अगले कल्प में तुम यहाँ से ऐसे संभल जाओ कि अगली बार ऐसा ना हो। यदि ऐसा होता तो व्यक्ति को बड़ी राहत मिलती कि चलो यार इस बार हो गया, अगली बार हम ऐसा नहीं करेंगे।
चलो ये इनका राय हम शिव बाबा तक पहुँचा देंगे और ये उसकी मर्जी है कि वो ऐसी मार्जिन रखे या न रखे।
वैसे भी एक चीज और इसी ड्रामा के संबंध में, क्योंकि जब तक जो जो मेल्स मैंने अब तक देखे हैं लोगों के या बातें मैंने सुनी हैं जो आते हैं, ज्यादातर इस 5000 ईयर के ड्रामा से लोग दुखी होते हैं और हूबहू वाली बात से बहुत परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। तो क्या इस 5000 वर्ष के चक्र को बताने की आवश्यकता महसूस होती
है? नहीं, देखिए तो ज्ञान दिया जा रहा है और ज्ञान तो संपूर्ण रूप से देना ही चाहिए। मैं भी एक अनुभव सुना दूं, मेरे पास फोन आए, हमारे जीवन में ऐसी बुरी बुरी घटनाएं हुई हैं, हम उनको फिर से होने नहीं देना चाहते, क्या करें? अब मैं तब तो उन्हें नहीं कहा कि कुछ नहीं किया जा सकता, मैंने उससे पूछा तुम ज्ञान में कैसे आ गए? कहा बस ये बहुत बुरी बुरी चीजें हुई, अशांति हुई मन में, तो हम खोजते खोजते यहाँ ब्रह्मा कुमारी में आ गए। मैंने कहा अगर मान लो तुम बहुत साहूकार रहते और तुम्हारा देवाला न होता, तुम्हें ऐसे अंत न होती, तो तब तुम यहाँ आते? कब? बिल्कुल नहीं, हम तो देखते भी नहीं थे, भगवान भगवान मारो बोली, कौन है किसने देखा है उसको छोड़ो। तो मैंने कहा खुश हो यहाँ आके? कहा बहुत खुश, भगवान मिल गया यहाँ आते ही तो हमें जीवन जीने का राह मिल गया, अब तुम भूल ही गए कि हमारा कुछ हुआ। तो मैंने कहा अगर वो न होता तो ये प्रभु मिलन भी न होता। अब एक चीज छोड़ दो, या तो उसको छोड़ो या इसको छोड़ो, बोलो क्या छोड़ना चाहते? तो कहना है उसी को छोड़ो, भगवान को नहीं छोड़ सकते हैं। तो एक्चुअली इस तरह यदि हम इनको लेंगे, उस सब में कहीं ना कहीं कल्याण था। ये भगवान के महावाक्य हैं कि सब कुछ कल्याणकारी है।
जी जी जी, चलिए बहुत ही गहरी बात है वैसे व्रता जी, व्यक्ति तुरंत तो एक्सेप्ट नहीं कर पाता, लेकिन सचमुच यदि गहराई में उतरे तो इसके पीछे कल्याण ही है, ये तो हम समझ सकते हैं। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया व्रता जी। मित्रों, हम वर्तमान में रहते हैं, अपनी वर्तमान बुद्धि के आधार पे हर चीज को जानने समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये ऐसी सूक्ष्म बातें हैं जो अध्यात्म की गहराई लिए हुए हैं, पर्दे के पीछे हैं या बहुत ही बहुत गहरी हैं, उन्हें शायद हम अपनी वर्तमान या शायद मोटी बुद्धि, मैं अपने लिए कह रहा हूं, उससे शायद हम नहीं समझ पाते। लेकिन ये तो सत्य है कि ये जो सृष्टि का चक्र बना है, ये क्रिया और उसका उसके फल से जुड़ा हुआ है। हमने जो किया उसी का फल हमें प्राप्त होता है। तो यदि इस रूप में हम इसे देखते हैं तो सचमुच मन और चित्त शांत होता है। और चलिए, जो चीजें हो गई उसको हम वहीं रखें, लेकिन वर्तमान अब हमारे हाथ में है, भविष्य हमारे हाथ में है, क्यों ना वर्तमान को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ करते चलें और एक अच्छा ड्रामा, एक अच्छा नाटक अपने लिए खुद ही लिखें। और जैसे नजरिए से मैंने शुरुआत की थी, मुझे लगता है कि नजरिए से ही अंत करना होगा, क्योंकि ड्रामा को एक अच्छे नजरिए से देखने की आवश्यकता है। एक बार ये हुआ कि मेजर अपने कुछ सिपाहियों के साथ कहीं जा रहे थे, तो सिपाहियों ने कहा कि सर, हम ऐसी जगह पे आ गए हैं जहां चारों ओर से शत्रुओं ने हमें घेर लिया है। तो मेजर साहब ने बड़े जोर से कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, अब हम किसी भी दिशा से शत्रु पर आक्रमण कर सकते हैं। देखिए, ये भी एक नजरिया है ना, डर या भय नहीं कि हम चारों तरफ से घिर गए हैं, अब हमारा अंत हो जाएगा। नहीं, मेजर साहब कहते हैं अपने सिपाहियों को, बहुत अच्छी बात है, चाहे पूर्व हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, किसी भी दिशा से हम शत्रुओं पर आक्रमण कर सकते हैं। तो एक नजरिया है मित्रों, अपने नजरिए को बहुत पॉजिटिव रखें, सुंदर रखें, स्वच्छ रखें, सब कुछ अच्छा अच्छा दिखेगा भी, अच्छा अच्छा होता भी चलेगा। जो बुरी घटनाएं हो गई हैं, पास्ट में हुई हैं, अब उन्हें बार बार याद करके उन्हें फिर से अपने जख्मों को हरा करने की आवश्यकता नहीं है। आगे की ओर देखें, सुंदर भविष्य की ओर देखें। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपका जीवन खुशहाली से परिपूर्ण रहे, अभी भी, आगे भी, पूरा कल्प भी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।